पंचदशी के कुटस्थ प्रकरण का 64 श्लोक। सर्वज्ञत्वादिचेसे कल्पयित्वा प्रदर्शयेत् धर्मिणं कल्पयेदस्यः को भारो धर्मकल्पने। सर्वज्ञत्वादिचेसे कल्पयित्वा प्रदर्शयेत् धर्मिणं कल्पयेदस्यः को भारो धर्मकल्पने। इसके पीछे आपने श्रवण किया कि जो ईश्वरस्यापि मायिकत्वे, ईश्वर भी मायिक है। अभी तक आप सुनते आए थे क्या मम माया दुरत्या, भगवान कहते थे ना, मेरी माया बड़ी दुष्कर है। और यह भी आपने श्रवण किया परमात्मा मायापति है। माया तो प्रकृतिम विद्यान, मायनम तो महेश्वरम, ये सारी बात सुनते आए थे कि माया प्रकृति है, मायनम तो परमेश्वरम, मायनम तो परमेश्वर। पर पंचदशी कार ने जरा दूसरे ढंग से समझाया। जिस प्रकार से व्यवहारिक जगत में पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, पक्की बात है ना, दृष्टांत बैठाएंगे तो दृष्टांत में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी बात। पिता से पुत्र हुआ, ये हो गया उत्पत्ति पक्ष। इसको क्या बोलते, उत्पत्ति पक्ष, मतलब जन जनक भाव पक्ष में पिता माता से पुत्र हुआ। परंतु ज्ञप्ति पक्ष में पुत्र ही माता पिता का बोधक है। भाई पुत्र न हो तो एक पिंड को कोई माता नहीं कहेगा, दूसरे पिंड को पिता नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो ज्ञप्ति पक्ष में पुत्र भी जनक है माता पिता का, ज्ञप्ति पक्ष में, बोध पक्ष में। उत्पत्ति पक्ष होता है, ज्ञप्ति पक्ष होता है, ज्ञान पक्ष। क्योंकि पुत्र के द्वारा ही एक व्यक्ति विशेष को कहते हैं पिताजी हैं, एक व्यक्ति विशेष का नाम माता जी हो जाता है। ऐसे यहां पर परमात्मा उत्पत्ति पक्ष में जगत का भले ईश्वर है, माया का भी ईश्वर है, मायाधिपति है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि मय्याध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। परमात्मा अध्यक्ष है, मालिक है, जैसे घर का मालिक पिता है, मालकिन माता है। परंतु पुत्र के बिना, शिष्य के बिना माता पिता गुरु संज्ञा नहीं होती है, वही बोधक है। ऐसे यहां पर घटाना कि भले ही परमात्मा मायापति है, माइन है, महेश्वर है, परंतु यह जो जगत है, जीव है, ईश्वर है, ये सब के सब माईक है, माया के द्वारा ही जाने जाते हैं। माया न हो तो कौन भगवान को भगवान बोलेगा, ये माया न हो तो कोई नहीं बोलेगा। बेटा न हो तो कौन बोलेगा पिताजी माताजी, कोई बोलेगा, कोई बोलने वाला नहीं। ऐसे यहां पर लेना कि ज्ञप्ति पक्ष में ये बात यहां बता रहे पंचदशी कार। तो क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा भले मायापति है, जैसी श्रुति कहती है कि माया तु प्रकृतिम विद्यान, माइनम तु महेश्वर, श्रुति वाक्य है। ये बात आपकी जगत उत्पत्ति पक्ष में है, जगत का सर्जन वही करता है, पालन भी करता, संहार भी करता है, परंतु माया के द्वारा, बिना माया के संभव नहीं है। तो माया के द्वारा ही जीव जगत ईश्वर ये तीनों जाने जाते हैं। माया न हो तो मन वाणी का अभिषय, ये सारी बात आगे आ रही है। जो मन वाणी का अभिषय ब्रह्म है ना, उसमें मन का वाणी का पहुंची नहीं है, इसलिए कह दिया सब माईक है। वही बात बता रहे हैं, ईश्वरस्यापि माईकत्वे तस्य जीवत असर्वज्ञत्वादि। कोई शंका कर रहा कि भाई आपने ईश्वर को भी कह दिया माईक है, तो तस्य मतलब ईश्वरस्य, ईश्वर में भी जीव के समान असर्वज्ञ हो जाएगा। ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं कि सर्वज्ञत्वादिकमपि माया एव कल्पयिष्यति इत्याह। जैसे माया ने ईश्वर की कल्पना कर ली, ऐसे ही और क्या, माया ने तो किया, माया से तो सब ईश्वर जीव जगत कल्पित हैं। और क्या, माईक है ना, माईक है, माया कृत है। जैसे कि पुत्र के द्वारा पिता माता शब्द है, उसके द्वारा कृतक है, पुत्र न हो तो कौन बोलेगा माता जी पिताजी। अब विचार करो पोता न हो तो दादाजी कौन बोलेगा, बोलना सही है ना। तो पोता के द्वारा दादाजी दादा दादी जी ये शब्दों का प्रयोग होता है। तो व्यक्ति पक्ष में पोता जनक है दादा और दादी का, उत्पत्ति पक्ष में तो दादा दादी है, परंतु व्यक्ति पक्ष में मतलब बोध पक्ष में, जैसे अग्नि का होता है ना कि अग्नि उत्पत्ति पक्ष में कारण है, धूम कार्य है, पर जब भी आप अनुमान करते हैं तो धूम को कारण बनाते हैं, हेतु बनाते, कारण ही बनाते, कहीं भी क्या बोलते हैं, धूम हेतु है, धूम कारण है, बोलते कि नहीं बताओ ईमानदारी से। परंतु अग्नि कारण है, उत्पत्ति पक्ष में धूम कार्य है, होता ही है व्यवहार में, भाई आग जलेगी तब तो धुआं होगा ना, ऐसे तो धुआं होगा, बिना आग जलाए धुआं थोड़ा पैदा होगा, पहले आग जलाएंगे फिर धुआं। तो उत्पत्ति पक्ष में आग हो गया कारण, हेतु धूम कार्य। जब अनुमान करते हैं ज्ञप्ति पक्ष में तो उल्टा हो जाता है, धूम होता है कारण, हेतु और अग्नि कार्य। ऐसे यहां समझना, जगत का ईश्वर भले ही मालिक है, स्वामी है, उत्पत्ति पक्ष में सर्जक है, पालक है, संहारक है, परंतु ज्ञप्ति पक्ष में ये जो माया है ना, माया ही कहते कि ये दुनिया है, ये जो है ना इस भगवान है, ये जीव है, तो माईक हो गए ईश्वर जगत जीव, ऐसा समझना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे माया ने बनाया धर्मी को, धर्मी मतलब जीव जगत ईश्वर, ऐसे उसके धर्म सर्वज्ञत्व बन जाएगा, सर्वशक्तिमत्व बन जाएगा, ये सारी बातें बन जाएगी। वही उत्तर दे रहे, सब माईक है, पूरा माईक है। सिद्धांत बैठ जाए ना तो भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सिद्धांत पूरा बैठ जाए। अब ये सब बातें जो है यहां टिप्पणी कार को लिखना चाहिए था, टिप्पणी कार को, जो टिप्पणकार है, जैसे ग्रीस भाई ने कल शंका किया ना, ये सब बात नियम क्या है, टिप्पणकार को लिखना चाहिए, जिसे लिखा ना एक दो तीन टिप्पणी है कि भाई ईश्वर जब जगत का मालिक है, नियंता सर्जक है, तो ईश्वर का माईक कैसे हुआ, तो हाँ तो इसका उत्तर दे सकते हैं कि उत्पत्ति पक्ष में भले ही ईश्वर कारण है, पर ज्ञप्ति पक्ष में माया कारण है, क्योंकि हमारे पास जो भी यंत्र हैं, आंख नाक कान त्वचा मन इंद्रियां बुद्धि, ये सारे यंत्र माईक हैं, मतलब माया से बने हुए हैं। जो यंत्र हमारे पास है, माया समझ लो, प्रकृति मान लो ना, जैसा श्रुति भगवती श्रुति कहती है कि क्या है, माया तो प्रकृति विद्या, माया नाम प्रकृति का है। तो मन बुद्धि इंद्रियां आंख नाक कान सब माईक हैं, तो माया के द्वारा ही आप परमात्मा को जानते हैं, जीव को जानते हैं, जगत को जानते हैं, क्योंकि जानने के सारे साधन हमारे पास माइक हैं। अमाइक नहीं, आंख भी माइक है, कान भी, मन भी, बुद्धि भी, इंद्रियां भी। उपासना करते करते मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा जैसा कठोपनिषद में आप सुनते आए हैं, दृश्यते त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। वेदान्यक में एक वाक्य है, मनसैव अनुद्रष्टव्यम देह नानाति किंचन। ये लगा दिया, मनसैव कह दिया, मनसैव अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा दर्शन होता है, देह नानाति किंचन। और का क्या कहा अन्यत्र इसके विरोध में, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसका तात्पर्य है कि अशुद्ध मन, विषय वासना से वासित जो हमारा मन है, जिस मन में विषय वासना के रंग चढ़े हुए हैं, ऐसे मन के द्वारा अप्राप्य है, वाणी से अप्राप्य है। पर वही मन उपासना से, भक्ति से, साधना से, वेदांत विचार से शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध मन के द्वारा उसका अनुभव साक्षात्कार होता है। तो जो भी यंत्र माइक है, माइक यंत्र होने से कह दिया कि भाई यह जो माया है वही ईश्वर को, जीव को, जगत को बनाती है, एवं उसमें जो धर्म है सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व जड़त्व इनको भी बनाती है। यह बात यहां बता दिया, सर्वज्ञत्वादिकमपि मायैव कल्पयिष्यति, कल्पना करेगी इत्याह। इसी बात को यहां पर दिखला रहे हैं कि सर्वज्ञत्वादिकम आदि सबसे नाम सर्वशक्तिमत्व, सारे शक्तियों वाला है। इसे कल्पयित्वा ईश्वर में कल्पना करके प्रदर्शित माया दिखलाती है। धर्मिणम कल्पयेत, कल्पयेत न या अस्या, जो धर्मी की कल्पना कर सकती है कौन, माया को भारो धर्म कल्पने, उसको धर्म कल्पना में भला भार मतलब दिक्कत क्या आएगी, कुछ भी भार नहीं हो सकता है। ईश्वर जैसे घट है धर्म घटत्व धर्मी ना, जीव हो गया धर्म, उसका अल्पज्ञत्व परिच्छिन्नत्व, ये हो गया आपका धर्म। तो धर्म धर्मी सब माया कल्पना कर लेती है, इतना समर्थ माया है। मार्कंडेय पुराण में आपने कथा सुनी ना, श्रीमद् भागवत महापुराण की आखिरी कथा आती है कि मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने दर्शन दिया, कहा वरदान मांगो, तो क्या बोले, बस एक बार आपकी माया देखना चाहता हूं। भगवान ने मना किया कि ना भाई, माया देखकर क्या करोगे, अपने आनंद में मगन रहो, ध्यान भजन चिंतन भाई। बोले प्रभु हमने सुना है कि आपकी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी भयंकर खतरनाक, एक बार देख तो लूं। बस बोलते ही कहते हैं कि ऐसा श्वास लिया है ना, पटस पुत्र सयानम बालम कुंदम मनसा स्वामी की कथा है, क्या देखते हैं, बड़ा भारी तूफान आया, जल ही जल, एक दोने पर छोटा सा नन्ना मुन्ना श्याम सुंदर अपने अंगूठे को मुखार बिंद में चूस रहे हैं, और जैसे सांस लिया अंदर चले गए, अनंत ब्रह्मांड का अनुभव होने लगा। यहां तो एक क्षण, वहां अनंत ब्रह्मांड, अनंत काल का, समय का, देश का सब अनुभव कर लिया मार्कंडेय ऋषि ने। इसी का नाम माया है, इसी को माया बोलते हैं। जो हम लोग अनुभव करते 100 वर्ष में यहां ना पृथ्वी लोक में, वही अनुभव हमारे जो बाल में एक छोटा सा जू होता अनुभव कर लेता, जू उतने समय का, 100 वर्ष की अनुभूति होती ना हमें, बहुत समय लगता। और छोटा जो हमारे बाल में जू होता है, इसको क्या बोलते हो, कीड़ा छोटा होता है ना, वो ऐसा अनुभव कर लेता जो 100 वर्ष का, वो क्या अनुभव करता है कि जो बाल है ना उसके लिए बड़ा भारी जंगल है। आपको लगता है बाल उसके लिए जंगल बड़ा भारी, जैसे जंगल में सरोवर झरना होती है, ऐसे जब वो काटता है ना तो खून निकलता है तो क्या समझता है कि झरना चल रहा है, ऐसा अनुभव करता है। जैसे आपके 100 वर्ष में पुत्र पौत्र सब होते ना, ऐसे उतने समय में उसके साथ पुत्र पौत्र 100 वर्ष की अनुभूति हो जाती है। और जैसे कि भूकंप आता तो क्या आप कहते हैं हाय राम सब मारे गए, ऐसे जब बाल का मुंडन करते ना तो क्या समझता है कि महाप्रलय हो गया। सोचो जो हमारी अनुभूति 100 वर्ष में, वो जू को क्षण भर में वही सारी अनुभूति हो जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी के विषय में आप सभी ने सुना है कि 4,32,00,000,000 वर्ष ब्रह्मा जी का सिर्फ 1 दिन 12 घंटा होता। हमारा इतना वर्ष ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 घंटे होते हैं, 4 अरब लाख नहीं, 1,000 बार ये चौकड़ी घूम जाती इस तरह से चौकड़ी, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। अभी ब्रह्मा जी की आधी आयु ढल चुकी, पूरी आधी हो गई, आधी मतलब 50-60 के ऊपर हो गए ब्रह्मा जी। बोलते द्विपरार्धे, बोलते संध्या, क्या बोलते द्विपरार्धे, तो ब्रह्मा जी की आधी आयु अब बीत रही है, बहुत बस बहुत थोड़ा हुआ, मामूली हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो, अभी तो मामूली सा हुआ। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान हमें दोबारा कली काल में ना आना पड़े। जन्म नहीं लेने के लिए आपको बिल्कुल तीव्र वैराग्य चाहिए, तीव्र वैराग्य, तत्परता। तत्परता क्या, कार्यम साध्यामि वा देहम जो है ना त्यजामि, चाहे मैं देह छोड़ूं या कार्य को सिद्ध करूं, देहम पात्यामि वा कार्यम साध्यामि, तब तो आपको भगवान मिल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। तीव्र वैराग होना चाहिए। जैसे व्यवहारिक जीवन में कोई समस्या आती है तो रात को नींद नहीं आती है, भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसे यहां पर होना चाहिए आपको। बिल्कुल संसार के किसी व्यवहार में, भोजन में, पानी में रस नहीं आना चाहिए, तब समझो तीव्र वैराग्य है, तब तत्काल आपको अपने स्वरूप का अनुभव होने लगेगा। आगे देखिए, तत्र उपपत्तिमाह धर्मिणम इति ननु जीव ईसयो रीव कुटस्थस्यापि मायिकत्वं प्रसज्जेत इति संकते। किसी ने शंका किया कि भाई जीव ईश्वर के समान कुटस्थ को भी माइक मान लो, ये भी माइक है, मतलब मायाकृत है, ऐसा मान लो, तब कहते ऐसी बात नहीं है, कुटस्थ माइक नहीं है, घटाकाश औपाधिक है, परंतु जो आकाश है वह आपका निरुपाधिक है। उपाधि आने से घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, डंडाकाश, पर घट पट म दंड हटा दो तो आकाश में जरा भी कोई उपाधि नहीं, ऐसे ही कुटस्थ निरुपाधिक है। यदि उपाधि आ जाएगी तो जी बोलेंगे, चिदाभास बोलेंगे, कुटस्थ नहीं बोलेंगे, सीधी बात है। जैसे व्यवहार में आप सुनते हैं ना कई बार कि कोई बोलता है कि मैं मुखे जीवा नास्ति, मेरे मुख में जीव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं व्याघात, व्याघात बैतो व्याघात हो गया। कोई बोला मेरी माता बंध्या है तो मतलब क्या निकला, बैतो व्याघात, मतलब विपरीत बात है भाई। जब मां बंध्या तू कहां से आया, तू है मतलब कि मां बंध्या हो नहीं सकती, सीधी बात। आप बोल रहे मतलब कि मुख में जीव है, बिना जीव के बोल नहीं सकते, ऐसे जब कुटस्थ है तो अमायिक होगा, और माइक होगा तो कुटस्थ हो नहीं सकता, यह बात बता रहे। कूटस्थे प्रतिशंका स्यात् इति चेन्माति संकेताम् कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणम् नहि विद्यते कूटस्थे प्रतिशंका स्यात् चेन्माति संकेताम् कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणम् न हि विद्यते। कहते हैं कि कूटस्थ में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती है। तीन होता ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। दो सत्रैसोने को लक्षण हम लोग मानते हैं। लक्षण कैसा है? दो सत्र शून्य हो तो शुद्ध लक्षण मानते हैं। यह जो कानून कायदा नियम है किसका है पता है ना आप लोगों को? न्याय दर्शन का, न्याय वैशेषिक का। और वेदांत का मापदंड है कि षड्विध लिंग तात्पर्य होना चाहिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपके कथन में, व्याख्या में, भाष्य में, टीका में, टिप्पणी में जब षड्विध लिंग तात्पर्य होगा तब तो व्याख्या सही है, टीका टिप्पणी सही है, अन्यथा उसको प्रमाणिक नहीं मानते। षड्विध लिंग तात्पर्य ग्राहक वाक्य जानते ना आप लोग, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, उपपत्ति और अंत में क्या है? अर्थवाद। अर्थवाद बोलते हैं कि कोई वाक्य निंदा परक या प्रशंसा परक। निंदा प्राशस्त्य, अन्यतर परम वाक्यम अर्थवाद। जैसे हमने कह दिया वायुर्वैच्छे पिष्ठा देवता, वायु बहुत शीघ्रगामी देवता है, ये प्रशंसा हो गया कि भाई वायु पवन बहुत ही तीव्रगामी देवता हैं, तो वायु को उपासना करने से आपकी जो कामना है बहुत जल्दी सिद्ध होगी। तो हनुमान जी पवन कुमार है ना, तो नियम एक कारण का गुण कार्य में आता है। तो वायु बहुत तीव्रगामी देवता है, तो उनके पुत्र हनुमान, हनुमान जी बहुत ही जल्दी तीव्र आपके फल को, कामना को पूरी कर देते, समस्या को, संकट को दूर कर देते। ये हो गया अर्थवाद हो गया। और निंदा वाक्य बोलते हैं कि वेद में बार बार निंदा किया कि भाई बरही सियाग में चांदी नहीं देना, चांदी दोगे तो रोना पड़ेगा। देवताओं ने बरही सियाग में क्या किया था कि अग्नि देवता को बहुत चांदी दिया था कि महाराज आप रखो संभाल के, हम आएंगे तब देना। जब देवता लोग आए कहे लाओ हमारी चांदी, हम तपस्या पूरी करके आ गए, तो कहते अग्नि देवता रोने लग गए। तब कहा कि भाई भूल कर भी बरिश याग में चांदी दान नहीं करना, अन्यत्र कर सकते, बरिश याग में निषेध है। ये जो निंदा वाक्य है कुछ याग में चांदी नहीं देना, तो अर्थवाद मतलब किसी काम में लगाना या किसी काम से हटाना। तो लगाने के लिए खूब एडवर्टाइज करते, प्रशंसा करते, महत्व बुद्धि उत्पन्न करते लगाने के लिए, इसको बोलते अर्थवाद। अथवा कैसे हटाना हो तो उसकी बुराई करते, ठीक नहीं है, बेकार है। तो ठीक नहीं बेकार नहीं मतलब है कि वहां से आपको निवृत्ति कराना है, ये तात्पर्य होता अर्थवाद वाक्य का। ये वेदांत का मापदंड है कि आपकी व्याख्या, टीका, टिप्पणी सही है गलत, इसके लिए आपको षड्विध लिंग तात्पर्य से गुजरना पड़ता है। ऐसे कुछ भी कोई व्याख्या कर दे तो नहीं चलेगा। आगे देखिए तो कहते हैं कूटस्थ माइक ऐसी शंका नहीं करना। क्यों नहीं शंका करना? कूटस्थ के माइक होने में कोई प्रमाण नहीं है। वह कूटस्थ कैसा? अमायिक है, मायातीत है, प्रमाणाभावात् मैवमिति परिहर्ति, प्रमाण का भाव है, मतलब प्रत्यक्ष आदि अनुमान आदि कोई प्रमाण है जिससे आप कूटस्थ को माईक कहो। कूटस्थ है आपकी आत्मा, वह अमायिक मतलब माया कृत नहीं, माया ने नहीं बनाया है। यदि माईक होगा ना तो माया के दोष आ जाएंगे कूटस्थ में। कूटस्थ अमायिक होने से कोई दोष उसमें नहीं है, निर्दोष है। कूटस्थस्य वास्तवत्वेपि प्रमाणम न उपलभ्यते इति आशंक्य श्रुतयः सर्वा अपि प्रमाणम इत्याह। कूटस्थ के वास्तविक होने में भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा कोई शंका करे कदे श्रुतियां प्रमाण है। कूटस्थ पारमार्थिक है, वास्तविक है, इसमें श्रुति प्रमाण है। वस्तु तत्त्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ता सकला अपि सपत्नरूपं वस्त्वन्यत् न सहन्तेत्र किञ्चन। वस्तु त्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ता सकला अपि सपत्नरूपं वस्त्वन् न सहन्तेत्र किञ्चन। कति वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य, अस्य मतलब कूटस्थस्य, अस्य मतलब कूटस्थस्य वेदान्तः। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। वेदान्तः अस्य कूटस्थस्य, कूटस्थ के विषय में बिल्कुल वस्तु तत्व वास्तविक है ऐसा वेदांत घोषयन्ति मतलब घोषणा करते हैं। हाँ, ताह बहुवचन, सारी श्रुतियां एक नहीं सारी श्रुतियां। भाई एक में तो एक वचन, दो में द्विवचन होता है, वेदांत वेदांतो वेदांत। सारी श्रुतियां, बहुत सारी श्रुति वाक्य हैं। सपत्न रूपम वस्तु अन्यत न सहन्ते, इस बात का सपत्न बोलते विरोधी, प्रतिपक्ष बिल्कुल नहीं है। न सहन्ते अत्र किंचन, कुछ भी सहन यहां पर नहीं करता है, मतलब कि एक मेवा अद्वितीय जो कूटस्थ है, आत्मा है, ब्रह्म है, जीव के शोधित रूप का नाम कूटस्थ है, और ईश्वर के शोधित अंश को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रह्म। ये सारी बातें समझने के लिए है। कूटस्थ ब्रह्म भी सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म में किसी शब्द का पहुंच नहीं है। ब्रह्म कैसा है, यतो वाचो निवर्तन्ते, जिस ब्रह्म में कोई धर्म है ही नहीं, निर्धर्मक है, उसमें कूटस्थत्व और ब्रह्मत्व भी नहीं रह सकता है। ये तो सिर्फ हम लोग समझने समझाने के लिए लोक व्यवहार का अनुवाद करके कहते हैं कि उसका नाम ब्रह्म है, इसका नाम कूटस्थ है। ये केवल समझने के लिए नहीं, तो शब्दों का विषय नहीं है। आगे देखिए, अत्र कूटस्थस्य पारमार्थिकत्वे प्रतिपक्ष भूतम अन्यत न वस्तु किंचन न सहन्ते इत्यर्थ। जो कूटस्थ है बिल्कुल पारमार्थिक है, वास्तविक है। पारमार्थिक बोलते हैं त्रैकाल्य अबाध्यत्वम पारमार्थिकत्वम, जिसका किसी काल में बाध न हो। देखो हमारे शरीर का बाध होता है बुढ़ापा में, वृद्धावस्था में, 100 वर्ष के बाद, परंतु शरीर के अंदर जो आत्मा है, हम क्या बोलते हैं, वही में बचपन में बड़ा दौड़ता था, जमाने में मिनटों में चला जाता था, अब तो एक एक पग संभल के चलना पड़ता है, बोलते हैं कि नहीं। तो शरीर का बाद हुआ पर मैं का बाद नहीं हुआ, वही मैं है जो बचपना में था, जवानी में था, वही बुढ़ापे में। तो पारमार्थिक बोलते हैं त्रैकाल्य अबाध्यत्वम, जिसका कभी बाद न हो, जागृत काल में, स्वप्न काल में, सुषुप्ति काल में, या भूत भविष्य वर्तमान, कभी किसी काल में बाद न हो, किसी देश में बाद न हो, अवस्था व्यवस्था से बाद न हो, उसका नाम आत्मा। और आप लोग कौन है? आत्मा ही की शरीर आत्मा। बहुत जल्दी बोल देती हूं मां बहन युधिष्ठिर से, जब पूछा कि बताओ तुमने क्रोध को जीत लिया कि नहीं, तो सबसे पहले किसने बोला नाम नहीं लूंगा, है ना, परंतु सबसे अंत में कौन बोले? युधिष्ठिर महाराज। बहुत बोले, कुछ भी नहीं उत्तर, एक दिन दो दिन तीन दिन हो गया, भाई क्रोध को आपने जीता कि नहीं? क्रोध बहुत अनर्थकारी है, अनिष्ट है। जिस प्रकार से अग्नि जब लगती है तो बाहर जलाती है, ऐसे क्रोध अग्नि का स्वरूप है, वो भीतर भी जलाता है, और जब वाणी से बोलते हैं तो बाहर भी लोगों को पीड़ा पहुंचती है, ताप होता है। बहुत समझाया द्रोणाचार्य ने, कुछ भी उत्तर नहीं। सबको याद हो गया, अर्जुन को, सहदेव को, नकुल को, दुर्योधन सबको। तीसरे दिन कहते हैं एक जोर से यष्टि डंडा का प्रहार किए, तब लहा गुरुजी अब समझ में बात आ गई। बोले कैसे अब आ गई? डंडे से आ गए। जब डंडा लगा तो मालूम पड़ा कि क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध होता तो अभी समझ में नहीं आई। तो ऐसे ही आप भी यहां विचार करना, क्या बात चल रही थी है? किस पर? नहीं नहीं, हाँ, आप आत्मा है कि जो है ना शरीर। यदि आप आत्मा है तो आपका तीनों काल में बाध नहीं होना, किसी देश में नहीं, काल में नहीं, वस्तु से नहीं। जब आप अपरिवर्तनीय हैं, किसी देश, काल, वस्तु से जरा ही परिवर्तन नहीं होता है, सच्चिदानंद काल मल्ल की, जो आप जागृत काल में, वहीं स्वाप्निक काल में, सुषुप्त काल में, जो बचपना में, वही बुढ़ापे में, वही जवाने में, सब में आप वही है। अवस्था मतलब कि जब आपकी अवस्थाएं बचपना थी, जवानी, बुढ़ापा, व्यवस्था मतलब कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सब हाजी हाजी करते थे, और बुढ़ापे में जरा व्यवस्था शिथिल हो जाती है, क्या बोलते, कमरे में रहो, अब बुढ़ापा आ गई, ये चंचलता शोभा नहीं देता, सब वो बच्चे उपदेश करते, मतलब कि उनके लिए क्रोध करना जायज है, चंचलता जायज है, और आपके लिए नजायज है। इस अवस्था में भी आत्मा वही होती है, तो आत्मा व्यवस्था से भी बिल्कुल नहीं बदलती है। जब आप आत्मा स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, तो बिल्कुल शरीर के पीछे सुखी नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, शोक संताप नहीं करना चाहिए, पर होता है उल्टा। हम लाख सुनते हैं, सुनने के बाद अब यहां से बाहर जाते ना, क्या लगता है हम शरीर हैं, ये देहाभिमान वज्र के समान अनादिकाल से जो है ना लिप्त हो गया, जैसे वज्र लेप होता वैसे वज्र के समान लिप्त हो गया है आपके साथ। इसलिए वज्र लेप को आपको दूर करना है, कैसे? धीरे धीरे करना है, एकाएक नहीं होगा। तो बार बार श्रुति कहती कि तुम कुटस्थ हो, तुम कैसे कुटस्थ हो, आत्मा हो, सच्चिदानंद हो, अमायिक हो, माइक नहीं। तो वह अनुभव कैसे होगा? अमायिक जब आप बनेंगे तब होगा, जो अमायिक होंगे ना तब जाके अनुभव होगा, क्योंकि आपका जो स्वरूप है कुटस्थ, वो अमायिक है, यहां अमायिक सिद्ध कर दिया। पर हमारे पास सारे संसाधन माइक है। देखो गड़बड़ यहीं पर होती है, हम क्या चाहते हैं कि हमारे माइक यंत्रों के द्वारा यंत्रों से उस अमाइक आत्मा का अनुभव होने लग जाए, यही गड़बड़ होती है। वह स्वरूप आपका अमाइक है, जो कुटस्थ है, अमाइक है, मायातीत है, जो सच्चिदानंद है, उसी आनंद को हम लोग माइक यंत्रों से देखना चाहते, सुनना चाहते, समझना चाहते, अनुभव करना चाहते, तो भला कैसे हो? नहीं, आपका कर्तव्य है, परंतु इससे अनुभव नहीं होगा। जैसे कि ध्यान दो, स्वप्नावस्था में हमारे सारे माइक यंत्र सो जाते हैं ना, जो माइक माया कृज आंख है, नाक है, कान है, सब इंद्रियां शांत, इसके बाद आप अनुभव करते हैं सोने के बाद। तो सुषुप्ति में जिस प्रकार से कोई इंद्रियां नहीं होती, कोई माइक यंत्र नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं, अपने आप का अनुभव करते कि मैं बहुत अच्छी तरह से बड़ा आनंद से सोया, कुछ भी नहीं जाना, ऐसा अनुभव होता ना, ऐसी यहां पर है। ये जो प्रक्रिया है उपासना भक्ति निष्काम कर्म, सिर्फ यह तो आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। अंतःकरण शुद्ध होते ही स्वरूप का स्वतः भान होने लग जाता है। जैसे कि दर्पण साफ हो गया, बढ़िया से सब साफ कर दिया, उसको पानी से, साबुन से, कपड़ा से पोछ दिया, अपने आप आपका मुखारविंद प्रतिभासित होने लगता है। ऐसे यहां पर है, हमें क्या करना है? उपासना भक्ति नाम जप सत्कर्म श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा सिर्फ आपका आवरण भंग होता। अविद्या आवरण है ना, मल विक्षिप आवरण तीन होता है, तो मल दोष की निवृत्ति होती निष्काम कर्म से, और उपासना से विक्षेप। विक्षेप मतलब आप बैठते हैं जप करने, ध्यान करने, मनीराम दिल्ली पहुंच जाता है, होता है क्या? और दिल्ली हो गए तो बंबई, हरिद्वार होंगे तो बंबई, बंबई होंगे तो हरिद्वार, गंगा जी आ जाती, इसी का नाम विक्षेप है। तो विक्षेप को हटाने के लिए उपासना, उपासना कर लेंगे तो बढ़िया से ध्यान लग जाएगा। आवरण के लिए है आपका ज्ञान, तो मल विक्षिप आवरण तीन दोष होते हैं, तो तीनों दोष को हटाने के लिए सारी प्रक्रिया है निष्काम कर्म, उपासना और वेदांत का विचार। स्वयं प्रकाश आत्मा जो अमायिक है, उसका अनुभव तो स्वतः होता, उसके लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं, साधन निरपेक्ष है। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।